प्रोग्राम सच्चाई की राह में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है हमारे साथ आपका ये सफर ना सिर्फ बहुत अच्छा गुजरेगा बल्कि हमें बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। आइए एक खूबसूरत गीत के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं।
यीशु मसीह सुलह का शहजादा, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, सुलह का शहजादा, सुलह का शहजादा, सुलह का शहजादा, यीशु मसीह सुलह का शहजादा। सुलह का शहजादा सुलह का शहजादा, सुलह का شہزادہ سلحا کا شہزادہ یسو مسیح سلحا کا شہزادہ۔
عزیز سامعین السلام علیکم، ہم خدا پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی۔ پچھلے دو پروگراموں میں ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح کی پیدائش عجیب اور اس کی فطرت منفرد اور اس کے کام سب سے الگ ہیں۔ اس کی پیدائش اور فطرت اور کردار تینوں کی مثال ملنا مشکل بلکہ دنیا میں ناممکن ہے۔ جہاں تک اس کی پیدائش کا تعلق ہے تو ہم نے معلوم کر لیا کہ پوری دنیا میں آج تک اس کی پیدائش جیسی کسی کی پیدائش نہیں ہوئی، کیونکہ جسم کے لحاظ سے زمین پر اس کا کوئی باپ نہیں۔ وہ روح القدس کے وسیلے کنواری سے پیدا ہوا۔ کردار کے لحاظ سے اور فطرتی کاموں کے لحاظ سے یسوع بے مثال اور یکتا تھا۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا پیدا نہ ہوا جس کی فطرت نافرمانی اور خطا کاری سے مبرہ ہو سوائے یسوع مسیح کے۔ اس کا جسم تو ہم انسانوں جیسا تھا، اس کی فطرت میں قصورواری اور خطا پسندی شامل نہ تھی، اور نہ ہی گناہ کا تخم اس کے شعور یا لاشعور میں موجود تھا، کیونکہ وہ ایسا نجات دہندہ ہے جسے خدا نے ہر شے سے جدا کر کے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی سزا خوشی سے اپنے اوپر لے لے۔ آج ہم انجیل مقدس سے یسوع مسیح کی بابت حضرت یوحنا نبی کی گواہیاں اور شہادتیں سنیں گے۔ یوحنا نبی ایسا نبی تھا جسے خدا نے مسیح کے آگے آگے راہ تیار کرنے کو بھیجا۔ یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یوحنا نبی کو یوحنا بپتسمہ دینے والا یا یوحنا استباغی کہا گیا ہے، اور اس کا عربی یا قرآنی نام حضرت یحییٰ ہے۔ یوحنا رسول کو صرف یوحنا لکھا گیا ہے، یعنی ان دونوں یوحنا کو پہچاننے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب یعنی باب نمبر ایک میں یوں مرقوم ہے، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کے لیے اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں۔ پس انہوں نے اس سے کہا، تو پھر تو کون ہے، تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں، تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خدا کی راہ کو سیدھا کرو۔ یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ یہ باتیں یردن کے پار بیتنیا میں واقع ہوئیں، جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ ہم یہاں تھوڑا سا وقفہ لیں گے اور حضرت یوحنا کی گواہی پر غور کریں گے۔ کیا آپ نے سنا یوحنا نبی نے مسیح کا حوالہ دیا؟ اب خدا کا کلام دوبارہ سنیں جو کہتا ہے کہ یوحنا نے مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ خدا کے نبیوں نے مسیح کو کئی ناموں سے پکارا، جیسے رہائی دینے والا، نجات دہندہ، بادشاہ، خداوند، خدا کا کلام اور خدا کا بیٹا۔ اب ہم نے یوحنا نبی کو خدا کا برہ کہتے ہوئے سنا۔ اب یہ نام سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے زیادہ قابل وضاحت ہے۔ یوحنا نے یسوع کو خدا کا برہ کیوں کہا؟ کیا یسوع برہ تھا؟ نہیں، یسوع اصلی برہ نہ تھا، جیسے ہمارے فوجی جوان اصلی شیر نہیں، یا کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ نواز شریف شیر پنجاب ہے۔
हम सब जानते हैं कि ये एक बोलने का ढंग है जिसे उर्दू ग्रामर में इस्तारा का नाम दिया जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे जवानों में इतनी बहादुरी और जुरत है कि दूसरा कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, या पूरे पंजाब में नवाज शरीफ जैसा बहादुर और नडर कोई नहीं। लेकिन यूहन्ना नबी ने मसीह को खुदा का बड़ा क्यों कहा? कोई अपने आप को बड़ा क्यों कहलवाएगा? यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को देखते हुए यसु की तरफ इशारा किया और उन्हें कहा कि देखो यह खुदा का बर्रा है जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। क्यों? यूहन्ना ने ऐसा क्यों कहा? खुदा के बर्रे के नाम का मतलब समझने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि जब हजरत आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने उनको क्या फरमाया? खुदा ने फरमाया कि गुनाह की मजदूरी मौत है और दोजख की आग है, और जब तक बेऐब बर्रे का खून ना बहाया जाएगा गुनाहों की माफी नहीं होगी। इस तरह हमने देखा कि आदम और हवा के दूसरे बेटे हाबल ने खुदा के कलाम को माना और खता की कुर्बानी के तौर पर बर्रा जबा किया और उसे कुर्बानगाह पर खुदा के हजूर पेश किया ताकि उसकी खताएं ढांपी जाएं। जब खुदाए पाक ने बर्रा का खून देखा तो उसने हाबल का गुनाह माफ किया और उसे रास्तबाज ठहराया, इसलिए कि एक बेऐब बर्रा उसकी जगह कुर्बान हो चुका था। उसके साथ ही खुदा ने यह भी फरमाया कि बर्रे का यह खून जो खता की कुर्बानी के तौर पर था, यह हमेशा के गुनाह का कफारा नहीं बल्कि आरजी है, क्योंकि जानवर की कीमत इंसान की कीमत नहीं हो सकती। इंसान जानवरों से कई गुना अफजल और कीमती है। वह बर्रा तो असली नजात दहिंदे और असली कफारे की कुर्बानी का अक्स था। असली नजात दहिंदे ने दुनिया में अगर दुनिया के गुनाह के लिए अपना खून बहाना था, इस तरह नजात दहिंदे की कुर्बानी कफारे की असली कुर्बानी करार पाई जानी थी, ताकि गुनाहगारों के गुनाह माफ हों और वो अपने गुनाह के सबब से खुदा के गजब और गुनाह की सजा से बच सकें। मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले यसाया नबी ने अपनी किताब में यूं लिखा, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला, जिस तरह बर्रा जिसे जबा करने को ले जाते हैं ताकि वो कुर्बान होकर हम सब के गुनाहों को उठा ले जाए, इसी तरह हाबल के जमाने से मसीह के कुर्बान होने तक जो कोई खुदा को मानता रहा वो ईमान के मुताबिक बर्रे की कुर्बानी में शामिल होता रहा। हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान और बाकी तमाम नबी पैगंबर और सब लोग जिन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया, उनकी आदत थी कि वो खुदा के हजूर बेऐब बर्रे की कुर्बानी चढ़ाया करते थे। इस तरह से वो आने वाले उसी दिन के मुंतजिर थे जब खुदाए पाक ने हकीकी और आखिरी कुर्बानी का बर्रा भेजना था, यानी पाक नजात दहिंदा जिसने अपना खून बहाकर गुनाहों के कफारे की कुर्बानी पेश करना थी, ताकि गुनाहगार अपने गुनाहों से और गुनाहों की सख्त सजा से नजात पाए। अजीज दोस्तों, यही वजह थी कि जब हजरत यूहन्ना नबी ने मसीह को अपनी तरफ आते देखा तो मसीह की तरफ अपने शागिर्दों से इशारा करके कहा कि देखो यह खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। इस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को बताया कि यस्सु जो तुम्हारे सामने खड़ा है वही मसीह मौऊद है, यानी वो बर्रा जिसे खुदा ने आसमान से उतारा है ताकि वो कामिल कुर्बानी हो जिसकी नबियों ने बार बार नबूवत की। यस्सु बनी नौ इंसान के गुनाहों का वो हकीकी कफारा है जो खुदा से हमेशा के लिए गुनाह की माफी दिलाता है, ताकि नस्ल इंसानी गुनाह की सजा के अब्दी अजाब से बच जाए। इसके बाद कलाम मुकद्दस बयान करता है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से दो शख्स खड़े थे, उसने यस्सु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो यह खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यस्सु के पीछे हो लिए। यस्सु ने फिर कर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ऐ रब्बी, तू कहां रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यस्सु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तस यानी मसीह मिल गया। वो उसे मसीह के पास लाया। यसु ने उस पर निगाह करके कहा, तू यहोन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यसु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस इंद्रयास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा, जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया, वो यूसुफ का बेटा यसु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चल कर देख ले। इस तरह हमें नजर आता है कि यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्दों ने सबसे पहले यसु की पैरवी शुरू की। यूहन्ना नबी के शागिर्दों ने यूहन्ना नबी को छोड़ा और खुदावंद यसु मसीह के पीछे चलने लगे। क्यों? उन्होंने यसु की पैरवी शुरू कर दी क्योंकि उनके उस्ताद यूहन्ना ने जो बात उनसे कही उन्होंने इस बात को दिलोजान से कबूल किया कि यसु ही मसीह है और खुदा का वो बर्रा है जिसकी पेशिन गोइयां नबी करते रहे थे। और तब यूहन्ना के शागिर्दों में से एक ने, जिसका नाम इंद्रयास था, मसीह की शनाख्त की कि यसु ही मसीह मौद है। वो अपने भाई शमौन पतरस की तलाश में निकल गया और उसे देखकर उससे कहने लगा कि हमें मसीह मिल गया। और जब यूहन्ना के एक और शागिर्द बनाम फिलिप्पस ने यसु को पहचाना कि वो कौन है, तो वो बेहद खुश हुआ और अपने दोस्त नतनएल से कहने लगा कि जिसका मूसा ने तौरात में और नबियों ने जिक्र किया है वो हमको मिल गया, वो यसु नासरी है। हाँ, इंद्रयास और पतरस, फिलिप्पस और नतनएल ने बड़ी खुशी मनाई क्योंकि उनको मालूम हो गया कि साल हासाल से खुदा के नबी नबुवत करते आते हैं कि मसीह मऊद आएगा, और अब वो उसे अपने सामने खड़े हुए अपनी आंखों से उसका दीदार कर रहे थे। खुदा की तारीफ हो। अब अजीम और कुदरत का मालिक, नजात दहिंदा, नबियों ने जिसकी पेशन गोइयां की उनकी आंखों के सामने उनके दरमियान खड़ा था। खुदावंद की हमद हो, आहर मसीह आ गया। इस तरह यूहन्ना के उन चारों शागिर्दों ने यसु की पैरवी शुरू कर दी और यसु के पहले शागिर्द होने का शर्फ हासिल किया। इसके बाद कलाम खुदा बयान करता है कि और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ किश्ती पर अपने जालों की मुरम्मत कर रहे हैं, और उन्हें बुलाकर कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन किश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यसु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा, और उसकी शोहरत तमाम सूर्या में फैल गई और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दकुपलस और यरूशलेम और यहूदिया और यर्दन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। खुदा ने चाहा तो अगले प्रोग्राम में हम इन कहानियों को आगे चलाएंगे जो जाहिर करती हैं कि मसीह यसु ने बड़ी भीड़ में लोगों को कैसे तालीम दी और बड़े बड़े मौजजे किए। हम देखेंगे कि यसु ने अपने कलाम और अपने काम से साबित कर दिया कि उसने जो दावा किया था कि मैं हूं, वाकई वो वही था। यसु के कॉल ऑफ फेल से उसके दावे की तस्दीक हो गई, यानी नबियों ने जिसके बारे में अपने सहीफों में लिखा था वो हूबहू नबियों की नबूवत के मुताबिक वही निकला। तो भी हमारे पास अब जो वक्त बचा है उसमें हम कलाम पाक का मजीद मुताला करेंगे और इस मुताला में देखेंगे कि यूहन्ना नबी के साथ क्या हुआ। हमने अभी देखा कि जब यूहन्ना ने दावा किया कि यसु ही मसीह है तो इसके बाद उसके शागिर्द एक एक करके उसे छोड़ने लगे ताकि वो यसु की पैरवी करने लगे। क्या यूहन्ना के शागिर्दों का ये काम उसे पसंद आया? क्या यूहन्ना नबी इस बात से खुश था कि उसके शागिर्दों ने उसको छोड़ दिया और वो यसु के शागिर्द बन गए? आपका क्या ख्याल है? अब यूहन्ना की अंजील के तीसरे बाब में लिखा हुआ सुनिए। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, अरे रबी, जो शख्स यर्दन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हो उसकी सुनता है और दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी खुशी पूरी हो गई, जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जब यूहन्ना के शागिर्द उसे छोड़कर यीशु की पैरवी करने लगे तो यूहन्ना ने बड़ी खुशी जाहिर की, बल्कि यूहन्ना की खुशी पूरी हो गई क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था। उसने मसीह के आगे उसकी राह तैयार कर दी थी। खुदा का सच्चा नबी होते हुए यूहन्ना की ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि वो लोगों को मसीह के पास लाए। हजरत यूहन्ना नबी आजकल के मजहबी रहनुमाओं से किस कदर मुख्तलिफ था। सच्चे रूहानी पेशवा हमेशा आपको मसीह की तरफ लाएंगे, क्योंकि यसू ही वो वाहिद शख्स है जो आपको जन्नतुल फिरदौस में खुदा की हजूरी में पहुंचा सकता है। यूहन्ना नबी को मालूम था कि खुदा के नबी तो बहुत से हैं, मगर नजात दहिंदा सिर्फ एक ही है। इसी सबब से यूहन्ना ने कहा, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। यूहन्ना की जिंदगी के आखिरी अयाम की बाबत खुदा का कलाम यूं बयान करता है, बस वो और बहुत सी नसीहत करके लोगों को मसीह की खुशखबरी सुनाता रहा। लेकिन चौथाई मुल्क के हाकम हेरोदीस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से और उन सब बुराइयों के बायस जो हेरोदीस ने की थी, यूहन्ना से मलामत उठाकर उसको कैद में डाला। इसी सबब से हेरोदीस ने यूहन्ना को पकड़कर बांधने और कैदखाना में डालने का हुक्म दिया। आखिर में हेरोदीस ने अपनी बीवी हेरोदियास को खुश करने के लिए यूहन्ना का सर कटवा दिया। इस तरह यूहन्ना को आसमान पर खुदा की हजूरी का शर्फ हासिल हुआ। खुदा का कलाम हमें बताता है कि यूहन्ना नबी अपने से पहले आने वाले तमाम नबियों में सबसे बड़ा नबी है। वो कौन सी खूबी थी जिसने यूहन्ना नबी को पहले आए हुए तमाम नबियों से बड़ा मकाम अता किया? इसका जवाब ये है, सब नबियों ने मुनादी की कि मसीह आने वाला है, वो आएगा, वो आएगा। तहम यूहन्ना नबी ने जो मुनादी की वो ये थी कि मसीह आ गया है, उसका नाम यस्सू है। देखो खुदा का बर्रा ये है जो जहान के गुनाह के बदले कुर्बान होगा ताकि वो दुनिया का गुनाह उठा ले जाए। देखो वो आ गया है, उसकी पैरवी करो, उसकी सुनो, उस पर अमल करो। इस तरह यूहन्ना ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी जो उसे सौंपी गई थी कि मसीह के आगे आगे उसकी राह तैयार करे, और उसने वो राह तैयार कर दी। प्रोग्राम सुनने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा ने चाहा तो अगले प्रोग्राम में अंजील मुकद्दस का मुताला जारी रखते हुए हम सीखेंगे कि यस्सु को तबीब आजम क्यों कहा जाता है। हमने जो कुछ सीखा, खुदा आपको तौफीक बख्शे कि वो आपके जहन में रहे। मसीह की बाबत यूहन्ना की गवाही से बढ़कर और कोई चीज अहम नहीं, क्योंकि यूहन्ना ने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। Oh, hey.
خط لکھنے کے لیے ہمارے پتہ جات نوٹ فرما لیجئے، پی او باکس نمبر 311 لاہور پاکستان، یعنی پوسٹ باکس نمبر 311 لاہور پاکستان۔ فون نمبر بھی نوٹ کر لیجئے 03-41-30-43-110 یعنی 03-41-30-43-110۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے life.walks@gmail.com یعنی life.walk@gmail.com۔ اب اپنے میزبان کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔